ಓಂ ಶಾಂತಿ. अगले सत्र के वक्ताओं को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं. सर्वप्रथम हमारे बीच पहुंच रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज के सेक्रेटरी जनरल आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई. करतल ध्वनि से हम आदरणीय भाई सबका स्वागत करते हैं. इस सत्र के गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में श्री सुनील कुमार बर्नवाल जी, एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे बीच आमंत्रित हैं. उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर पधारें और मंच पर अपना स्थान लें. साथ ही साथ मैं मंच पर निमंत्रण देना चाहता हूं श्री राजभूषण चौधरी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे बीच हैं. उनसे भी मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे पधारें और मंच को सुशोभित करें. साथ ही साथ हमारे बीच मंच पर शोभायमान हैं राज्ययोगिनी ब्रह्मा कुमारी प्रभा दीदी जी, जो निदेशिका हैं ज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड माउंट आबू. दीदी जी, आपका भी तहे दिल से स्वागत है. हम करतल ध्वनि से आदरणीय दीदी जी का भी स्वागत करते हैं. साथ में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं श्री सुधीर कुमार पंडा, मैनेजिंग डायरेक्टर प्रतिदिन टीवी एंड न्यूज़पेपर ओडिशा से हमारे बीच हैं, जो राष्ट्र चेतना पुरस्कार के लिए उन्हें आज चुना गया है, उन्हें सम्मानित किया जाएगा. उन्हें भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं. मैं साथ ही निमंत्रण देना चाहता हूं श्री राजेंद्र शेंदे जी को, जो फाउंडर डायरेक्टर हैं ग्रीन टेरे फाउंडेशन पुणे से हमारे बीच पधारे हैं. उन्हें भी गार्डियन ऑफ ह्यूमैनिटी इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा. उन्हें भी मैं मंच पर निमंत्रण देना चाहता हूं. कुछ ही मिनटों में हमारे बीच मंच के अन्य अतिथि भी पधारेंगे. तब तक मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप अपने स्थान को ग्रहण करें. बहनों की तरफ जो सेवाधारी हैं हॉल के, उन बहनों से अनुरोध है कि हॉल के दरवाजे बंद कर दिए जाएं. इन फ्यू मोमेंट्स वी विल बिगिन द प्लेनरी थर्ड सेशन, यूनाइटेड एफर्ट्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज. इस सत्र का आगाज माननीय राज्यपाल महोदय के आगमन से शुरू होगा. तब के लिए हम कुछ घड़ियों का इंतजार करेंगे. मैं मंच पर निमंत्रण देना चाहता हूं ब्रह्मा कुमारी की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राज्ययोगिनी ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी जी को, कि वो भी पधारें और मंच को अलंकृत करें. कुछ ही मिनटों में हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे. माननीय राज्यपाल महोदय हमारे बीच हैं. मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं. हमारे बीच राजयोगिनी जयंती दीदी जी, पूज्य साध्वी भगवती सरस्वती जी हमारे बीच पहुंचे हैं. मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो मंच के समक्ष पधारें. आदरणीय राज्यपाल महोदय अभिवादन स्वीकार करते हुए और साथ ही साथ प्रभा दीदी जी अभिवादन देते हुए, जयंती दीदी जी राज्यपाल महोदय के समक्ष हैं. और मैं अनुरोध करता हूं इस कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ के लिए मंचस्थ हमारे लगभग सभी अतिथिगण विराजमान हैं. राष्ट्रगान से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा. मैं सभी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े रहें और राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं. राष्ट्रगान.
जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता.
जय 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 जय
बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपने स्थान को सुशोभित करें। कर्नाटक के माननीय राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत जी का हम करतल ध्वनि से इस सभा में स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से माननीय राज्यपाल महोदय का ब्रह्मा कुमारीज के डायमंड हॉल में स्वागत है। ग्लोबल समिट 2024 के इस तीसरे प्लेनरी सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज विश्व की अनेक परिस्थितियों पर सबका ध्यान जा रहा है। एक ओर युद्ध और हिंसा विश्व में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रकृति का भी हिंसक स्वरूप देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट चेंज हमारी सदी की एक ऐसी त्रासदी है जिसके बारे में विश्व भर में चर्चा हो रही है। आज छोटे हों, युवा हों, मध्यम वर्ग के लोग हों, किसी भी आयु या किसी भी जनजाति से संबंध रखने वाले लोग हों, क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन हर एक को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में क्या सिर्फ सरकारों के कार्य से या गैर सरकारी संगठनों के कार्य से या सिर्फ पर्यावरणविदों के कार्य से क्या प्रकृति का संतुलन वापस लौटाया जा सकता है? क्या प्रकृति के इस पुकार को हम सुनकर मिलकर कुछ कार्य कर सकते हैं? आज के इस सत्र का यही विषय है। इस विषय पर चर्चा को शुरू करें उससे पूर्व मंच पर उपस्थित हमारे सभी महानुभावों का भारत की प्राचीन परंपराओं का निर्वहन करते हुए स्वागत करने के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करता हूं कि वो पुष्पों द्वारा मंच पर उपस्थित हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करें और साथ साथ बैज पहनाकर इस सत्र के लिए उन्हें आमंत्रित भी करें। सर्वप्रथम हमारे मुख्य अतिथि कर्नाटक के माननीय राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत जी का स्वागत हो रहा है। हम तालियों के साथ इस अभिनंदन की प्रक्रिया में साथ देंगे और साथ ही साथ स्वागत हो रहा है ब्रह्मा कुमार बिजमोहन भाई जी का, श्री राजभूषण चौधरी जी माननीय मंत्री जल शक्ति भारत सरकार एवं श्री सुनील कुमार बर्नवाल एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं श्री सुधीर कुमार पंडा राजयोगिनी प्रभा दीदी जी का भी स्वागत पुष्पगुच्छों से कर रहे हैं। मैं बहनों से अनुरोध करता हूं कि आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी जी एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी हमारे बीच हैं, आदरणीय दीदी जी का भी स्वागत हम चाहते हैं। पुष्पों से बैज पहनाकर और सम्मान देते हुए दीदी जी का भी स्वागत किया जा रहा है। इस स्वागत की परंपरा में हम सभी करतल ध्वनि से साथ निभाएंगे और मंच पर उपस्थित हमारे सभी स्वजनों का और अतिथिजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं मंच पर एक बहुत ही सुंदर स्वागत नृत्य प्रस्तुत करने के लिए डॉक्टर लता सिंह मुंशी जी, जो भारत के राष्ट्रीय नृत्य भरतनाट्यम का हमारे बीच मंचन करेंगे और आप सभी अतिथियों का सभागार में स्वागत करेंगे। स्वागत नृत्य प्रस्तुत करने के लिए डॉक्टर लता सिंह मुंशी जी आ रहे हैं, भारत के जानी मानी सुप्रसिद्ध नृत्यांगना एवं नृत्य गुरु हैं। इन्होंने भारत और भारत के बाहर भारत की नृत्य परंपराओं को विश्व व्यापक बनाया है। अनेकानेक डांस फेस्टिवल्स में भरतनाट्यम की प्रस्तुति देकर भारत के इस राज नृत्य को एक वैश्विक मंच प्रदान किया है। May I now invite upon the stage Dr. Lata Singh Munshi, the renowned Bharatanatyam exponent, who has won many awards and presented Bharatanatyam, the national dance of India, at national and international theatres and stages. Unhe Nritya Adhyay Sangeet Darpan ke liye PhD se bhi nawaza gaya hai, Barkatullah University, Bhopal se. Aaj हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ये हमारे बीच स्वागत नृत्य प्रस्तुत करेंगे। कुछ ही देर में वो हमारे बीच स्वागत नृत्य की प्रस्तुति करेंगे, उससे पूर्व मैं शब्दों से स्वागत करने के लिए निमंत्रण देना चाहता हूँ राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी प्रभा दीदी जी को, जो ब्रह्मा कुमारी इसकी वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं और निदेशिका हैं ब्रह्मा कुमारी इसके ज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड के। मैं आदरणीय दीदी जी से अनुरोध करता हूँ कि दीदी जी अपने शब्दों से मंच पर उपस्थित महानुभावों का स्वागत करें और साथ ही साथ सभा में उपस्थित आप सभी स्वजनों और अतिथियों का भी शब्दों से स्वागत करें। आदरणीय प्रभा दीदी जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वैश्विक शिखर स्वस्थ और स्वच्छ समाज के लिए आध्यात्मिकता के आज संध्याकालीन सत्र में आप सबका स्वागत है। बाहरी स्वस्थता से बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही मानसिक स्वस्थता से हम मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त जरूर करते हैं। इसके लिए आध्यात्मिकता की बहुत आवश्यकता है और आध्यात्मिकता से ही मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, पारिवारिक स्वास्थ्य यानी संपूर्ण स्वास्थ्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सब मिलकर के परमात्मा की प्रेरणा से प्राप्त, परमात्मा की प्रेरणा को प्राप्त करते हुए मानसिक विचारों को शुद्ध और श्रेष्ठ बना करके हम श्रेष्ठ समाज को फिर से स्थापन कर सकते हैं। तो परमपिता परमात्मा के इस श्रेष्ठ कार्य के अंदर विशेष आप सभी का बहुत बहुत मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज के हमारे संध्याकालीन शस्त्र के हमारे विशेष मुख्य मेहमान परमपिता परमात्मा शिव पिता की संतान श्री थावरचंद गहलोत जी का मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आज के हमारे विशेष बृजवन भाई जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारी राजयोगिनी जयंती दीदी जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सुनील कुमार वर्नालावाल जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। श्री राजभूषण चौधरी जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। श्री सुधीर कुमार पनाड़ा जी का भी मैं स्वागत करती हूँ। श्री राजेंद्र शिंदे जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और साथ साथ आज इस सभा में पधारे हुए सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रभा दीदी जी का, जिन्होंने शब्दों से, शब्द सुमनों से अतिथियों का और आप सभी का स्वागत किया। ऐसे दीदी जी का भी हम करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं, जोरदार तालियों से दीदी जी का अभिवादन है एवं धन्यवाद है। जब हम आज के वर्तमान परिस्थितियों को देखते हैं तो अक्सर ये सोचा जाता है कि मानव अगर ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। जब इस ग्लोबल समिट का उद्घाटन हो रहा था तो भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने भी यही शब्द उच्चारे। उन्होंने कहा कि प्रकृति आज एक ऐसी त्रासदी से गुजर रही है जिसके कारण मनुष्य हैं। अगर मनुष्य अपने व्यवहार को बदले, अपने चिंतन को बदले तो बहुत कुछ संभव हो सकता है। उन्हीं शुभ प्रेरणाओं को लेते हुए क्या आध्यात्म का भी एक पहलू है जो पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर पर्यावरण के साथ सामंजस्य को बनाने के लिए रखता है। हमारे बीच एक ऐसी ही विभूति है जिन्होंने अपने जीवन के लंबे काल तक इस राजयोग का अभ्यास किया है। भारत ही नहीं, भारत के बाहर भारत के इस प्राचीन राजयोग को सभी तक पहुंचाने का गौरवशाली कार्य किया है। साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज जैसी वैश्विक समस्याओं का समाधान करने हेतु आध्यात्म के परिपेक्ष को भी विश्व के सामने प्रस्तुत करने वाली एक प्रखर वक्ता हमारे बीच हैं। मैं निमंत्रण देना चाहता हूं ब्रह्मा कुमारीज की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी जी से कि आज के इस विषय पर हम सबको अपने विचारों से प्रकाशमान करें। आदरणीय जयंती दीदी जी।
ओम शांति। रिस्पेक्टेड गवर्नर, रिस्पेक्टेड मिनिस्टर्स ऑन द डायस एंड अदर इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज एंड माय डियर ब्रदर ब्रदर ब्रिजमोहन जी एंड ऑल द गैदर्ड डेलीगेट्स एंड गेस्ट्स एंड फैमिली, ओम शांति। आज सवेरे भी यही इसी बात पर चर्चा चली थी कि जब हम क्लाइमेट चेंज की बातें का वर्णन करते हैं तो पहले तो 10 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले लोग शायद इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते थे कि हाँ ये कोई बात सही है, परंतु आज जबकि हर एक का अनुभव ये कहता कि जिस प्रकार का मौसम चल रहा है, सर्दियों में कभी गर्मी आ जाती, गर्मियों में अति गर्मी हो जाती, और फिर जहाँ बाढ़ आती और कहाँ फिर सूख जाता, तो ये सब बातें जो उथल पाथल प्रकृति की हम देख रहे हैं उसका कारण फिर सोचते हैं कि क्या है। अभी तो साइंस के हिसाब से हम अच्छी तरह से मान सकते हैं कि मानव के कर्तव्य के कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। और जब फिर प्रश्न आता है कि जिम्मेवार कौन, तो हम कहेंगे कि हाँ हम सब, परंतु न सिर्फ हम सब परंतु मैं खुद भी इस बात की जिम्मेवार हूँ। और उसमें भी खास करके जिसको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, उस कारण से ही एक मुख्य कारण बना है विश्व की जो तपात है वो इतनी ऊंच चढ़ती जा रही है। यूरोप में एक तरफ हम देखते हैं फ्लड्स है, दूसरी तरफ हम देखते हैं वाइल्ड फायर्स है। तो हर बात का कॉन्ट्रास्ट जो आज देखने में आ रहा है, एक्सट्रीम सिचुएशंस। कहते हैं कि न सिर्फ ये क्राइसिस है परंतु ये परमा क्राइसिस है, परमानेंट स्टेट ऑफ क्राइसिस। तो ऐसे समय पर क्या मैं अपनी जिम्मेवारी उठा सकती हूँ कि मुझे अब क्या करना होगा? एक बात जब हम सोचते हैं तो चलो फॉसिल फ्यूल्स के बदले में आजकल रिन्यूएबल एनर्जीज बहुत बहुत प्रचलित है, उसका भी रिसर्च बहुत हो चुका है, परंतु फिर भी जिस प्रकार का हमारा कंफर्ट जोन होता हम उससे हिलने नहीं चाहते हैं। परंतु आगे यदि हम चाहते हैं कि मानवता किस तरह से आगे बढ़े, तो उसमें ब्रह्मा कुमारीज ने फॉसिल फ्यूल्स को 80s के संबंध से ही, मीन्स 30-40 years ago, 40 वर्षों से फॉसिल फ्यूल्स के बदले में हम लोग सोलर एनर्जी यूज करते जा रहे हैं। आज भी सोलर का सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंडिया 1 का चल रहा है, परंतु ये सब एक प्रकार की टेक्निकल बातें हैं। मुख्य और बात ये है कि जो सोसाइटी आजकल कंस्यूमरिज्म मटेरियलिज्म में चल रही है, वो भी मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ, तो कहाँ तक हम अपने जीवन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं? इस बात पर जब हम विचार करते हैं कि कंस्यूमरिज्म मटेरियलिज्म क्यों चल रहा है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि मानव अपनी खुशी के लिए, अपने सुख के लिए ये सब प्रयत्न कर रहा, परंतु कहाँ तक उसमें हम सफल रहे हैं खुद ही देख सकते। कितनी भी बड़ी गाड़ियाँ लो, परंतु जो आंतरिक खुशी होनी चाहिए वो तो नहीं प्राप्त होती। तब तक खुशी है जब तक मेरी गाड़ी बढ़िया है और नेबर की गाड़ी उससे कुछ कम है। दूसरे दिन यदि नेबर की गाड़ी मेरे से बढ़िया आ गई तो मेरे मन में वही बात आएंगी कि मुझे वो चाहिए। तो ये जो कंस्यूमरिज्म की बातें आती है, मुझे लगता है कि एक मुख्य कारण ये है कि हम अपने आप को बिल्कुल भूले हुए हैं। और जब आत्मा खुद अपने आप को भूल करके सिर्फ अपना मटेरियलिस्टिक कॉन्शियसनेस में, इस फिजिकल कॉन्शियसनेस में बंध जाती, तो फिर बाहर की चीज़ों के लिए हम भागते रहते। और जिस घड़ी हमें ये पहचान होती कि मैं आत्मा हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, साथ ही साथ मुझ आत्मा के अंदर ही जो मैं चीज़ें बाहर ढूंढ रही हूँ, इनफैक्ट रियलिटी है कि वो सब कुछ मेरे अंदर ही है। मैं सुख चाहती हूँ तो आंतरिक सुख हमें परमात्मा की याद के द्वारा जो प्राप्त होता वो एक विशेष अनुभव है। मैं शांति चाहती हूँ, शांति कोई दुकान से खरीदी नहीं जा सकती, परंतु जब अंदर की यात्रा करते हैं, अंदर गौर से हम जा कर के अपने भीतर देखते हैं, तो उसमें जो हमें शांति का अनुभव परमात्मा की याद के द्वारा प्राप्त हो सकता, वो कहीं बाहर से, कितना भी आप जंगल में जाओ, बीच पर जाओ, वहाँ पर भी नहीं प्राप्त हो सकता। तो जब व्यक्ति को इस बात की पहचान होती कि मैं कौन हूँ और किसके द्वारा हमें सच्चा सुख मिल सकता, सच्ची शांति मिल सकती, और वो हमें अनुभव प्राप्त होने के बाद जो हमारे मन की वृत्ति बदल जाती, तो हमारे अंदर जो पहले ये लोभ रहता, ये अहंकार होता कि हमें सब कुछ ये मिले, वो सब ऑटोमेटिकली परिवर्तन होकर के बिल्कुल शांत हो जाता। ये कोई संन्यास की बात नहीं है, ये भी कोई त्याग की बात नहीं है, परंतु जब मानव को कोई और ऊंची प्राप्ति होती तो उससे कम चीज़ जो है वो अपने आप ही छूट जाती। तो अनुभव ये कहता कि जब आत्मा स्वयं को पहचान कर परमात्मा के प्यार के सागर, उस प्यार का अनुभव करती, प्राप्ति होती, तो फिर बहुत सिंपल लाइफ में भी आत्मा बिल्कुल संतुष्ट है। नहीं तो कितना भी बाहर का सब कुछ प्राप्त हो, देखते हैं कि असंतुष्टता हर आत्मा के अंदर है। और जिस घड़ी हम संतुष्ट हो जाते तो फिर हमारी जीवन ऑटोमेटिकली सिंपल हो जाती है, और हम यही चाहते हैं कि अन्य आत्माओं को भी वो अनुभव हो जो परमात्मा के द्वारा प्राप्त हो सकता। तो मैंने देखा है कि एक तो जीवन को सिंपल बनाने से, कंस्यूमरिज्म से हम हट सकते। दूसरी बात, कई लोग मानते हैं कि आज लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत आवश्यक है, परंतु उनको तरीका नहीं आता, लगता है कि बहुत कठिन बात है अपने डाइट को चेंज करना, प्लांट बेस्ड डाइट बनाना, या कुछ और प्रकार से भी जो की बातें हम आदत से मजबूर हो गए हैं उन बातों का छोड़ना। ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस कहते हैं कि होनी चाहिए परंतु कर नहीं पाते हैं, उसका कारण कि परमात्म शक्ति का अनुभव नहीं। और जैसे जैसे परमात्म शक्ति का अनुभव प्राप्त होता तो कई प्रकार की आदतें ऑटोमेटिकली छूट जाती। लाइफस्टाइल चेंज कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल हम अच्छी तरह से अपने जीवन को इस तरह से चला सकते हैं जिसमें नेचर के साथ, प्रकृति के साथ, पशु पंखी पंछी के साथ हमारा जो अहिंसक व्यवहार होना चाहिए, उस व्यवहार को हम अपने जीवन में धारण करके एक शांतिमय संसार फिर से बना सकते हैं। बातें बहुत है परंतु शॉर्ट में संदेश यही है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। विस्तार का विषय है और हम सब की जिम्मेदारियां क्या है कि कैसे हम अपने परिवर्तन से प्रकृति के अंदर होने वाले परिवर्तनों को ठीक कर सकते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी यही कहा था कि जो बदलाव मैं बाहर देखना चाहता हूं वो बदलाव मुझे खुद बनना होगा। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच श्री राजभूषण चौधरी जी, माननीय मंत्री जल शक्ति भारत सरकार पहुंचे हैं। माननीय मंत्री जी का तहे दिल से स्वागत है। मैं बहनों से अनुरोध करता हूं कि उनको भी सम्मान देते हुए पुष्पगुच्छों से एवं बैज पहनाकर स्वागत करें। हम करतल ध्वनि से माननीय मंत्री जी का स्वागत करते हैं। श्री राजभूषण चौधरी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वार्म वेलकम टू द ब्रह्मकुमारी फैमिली on the occasion of the Global Summit 2024. मैं साथ ही स्वागत नृत्य के लिए निमंत्रण देना चाहता हूं। भरतनाट्यम की प्रस्तुति करने के लिए आज किन्हीं कारणों की वजह से डॉक्टर लता सिंह मुंशी जी हमारे बीच नहीं पहुंच सकते, मगर उनकी दोनों शिष्याएं हमारे बीच एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति शिवा प्रस्तुत करने आ रही हैं। अनन्या यादव और वैष्णवी द्विवेदी, जो पिछले 8 वर्षों से भी अधिक समय से भरतनाट्यम की शिक्षाएं ग्रहण कर रही हैं, वो उनके गुरु के स्थान पर नृत्य प्रस्तुति करेंगी। और कल डॉक्टर लता सिंह मुंशी जी को आप इसी मंच पर देख पाएंगे। आज उनके पैरों में हल्की सी चोट है जिसके कारण वो विश्राम ले रही हैं और क्षमा प्रार्थी हैं, मगर उनकी शिष्याएं आप सभी का स्वागत चाहेंगी शिवा इस नृत्य को प्रस्तुत करने के लिए। जोरदार तालियों से प्रोत्साहन देते हुए इन दोनों कन्याओं का उमंग उल्लास बढ़ाएं।
கிட்டத்தக்க கிட்டத்தக்க தும் திமித்த திமித்த திமி திமி கிட்டத்தக்க தும் 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 தரி கிட்டத்தரி கிட்டத்தக்க தும் திமித்த திமித்த திமி திமி கிட்டத்தக்க தும் 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 தரி கிட்டத்தரி கிட்டத்தக்க தும் திமித்த திமித்த திமி திமி கிட்டத்தக்க தும் 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 தரி கிட்டத்தரி கிட்டத்தக்க தும் நிர்குண பரபிரம்
बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी अनन्या और कुमारी वैष्णवी का, जिन्होंने ये बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। परमात्मा को, शिव को त्रिमूर्ति कहा गया है, उसे उत्पत्ति, स्थिति और लयकारक कहा गया है। सृष्टि के इस चक्र में परमात्मा के कर्तव्य को देखना, उसके इन कर्तव्यों को प्रस्तुत करना, इस नृत्य के माध्यम से अलग भाव भंगिमाओं से प्रस्तुति दी गई। आज जब हम प्रकृति में असंतुलन देखते हैं, जब सब कुछ आउट ऑफ ट्यून नजर आता है, जब कोई चीज लय से बाहर होती है, तो वापस उसे लय में कौन ला सकता है। हर मुश्किल घड़ी में इंसान ने भगवान की ओर रुख किया है। आज क्लाइमेट चेंज जैसी विश्व में उभरती समस्याओं के लिए भी क्या आध्यात्म, परमात्म की शिक्षाएं कोई मार्गदर्शन देती हैं? इन विषयों पर गहराई से चिंतन होता आ रहा है। यहां तक थी संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण सम्मेलनों में आज फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस की भागीदारी बढ़ती जा रही है। ये समझा जा रहा है कि एकजुट होकर हम क्लाइमेट चेंज की समस्याओं का निर्वहन कर सकते हैं, उसका समाधान खोज सकते हैं। आइए, अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे बीच श्री सुनील कुमार बर्नवाल जी, एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वह आए और इस विषय पर शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ हम कर सकते हैं, किन शिक्षाओं के आधार पर आज हम समाज में क्लाइमेट चेंज के प्रति जागरूकता और उसका परिवर्तन ला सकते हैं, इस विषय पर प्रकाश देंगे। मैं निमंत्रण देना चाहता हूं श्री सुनील कुमार बर्नवाल जी, एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। करकल ध्वनि से माननीय महोदय का स्वागत चाहते हैं।
ओम शांति। आज के इस ग्लोबल सबमिट में उपस्थित माननीय कर्नाटक के राज्यपाल महोदय, भारत सरकार के राज्य मंत्री, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, आज इस ग्लोबल सबमिट का जो अभी के सेशन का विषय है, क्लाइमेट चेंज, किस प्रकार हम सामूहिक प्रयास से इस एक बहुत बड़ी वैश्विक चुनौती का न केवल सामना कर सकते हैं, बल्कि उसका समुचित समाधान निकाल सकते हैं। इसमें शिक्षा का और हमारे सभी शैक्षणिक संस्थानों का अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हम जानते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज इंटर जेनरेशनल समस्या है, यह केवल एक पीढ़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी ये समस्या रहेगी, बढ़ भी सकती है अगर हम समय से इसका समाधान नहीं निकालते। और इसलिए अगर इसका सही समाधान चाहिए तो हमें आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के हर व्यक्ति के मन में इसके प्रति गंभीरता, जानकारी और इसके समाधान की विधियों को विशेष रूप से संकल्प के रूप में लाने की आवश्यकता है। हम जानते हैं यह प्रयास केवल सरकार और कुछ गैर सरकारी संस्थानों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हर व्यक्ति जो इस पृथ्वी पे जन्म लिया है, जो इस पृथ्वी से कई प्रकार की ऊर्जा ग्रहण करता है, उन सबको इससे अवगत होने की जरूरत है। और ये इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे शैक्षणिक संस्थानों का है। उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय में जिस प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, सभी प्रकार के विश्वविद्यालय, कॉलेजेस, स्कूल्स, ये सारे ऐसे परिसर हैं जहां पे हम नई पीढ़ियां तैयार करते हैं, जहां हम जो शिक्षा देंगे वही आगे वो कर्म बनता है और वही एक संकल्प के रूप में परिलक्षित होता है। और इसलिए अभी जैसा कि भारत सरकार की कई योजनाएं शुरुआत की गई है, उसमें एक महत्वपूर्ण है जो इस बार विश्व पर्यावरण दिवस के दिन शुरू किया गया था, एक पेड़ मां के नाम। और यह केवल एक स्लोगन नहीं है, इसका बहुत ही गूढ़ मंत्र है, गूढ़ विषय है कि जिस धरती को हम मां का स्वरूप देते हैं, जिससे हम बहुत कुछ ग्रहण करते हैं, उसके नाम, आज वो पीड़ित है, आज वो व्यथित है और इसलिए उसे हमें कुछ देने की जरूरत है, उसकी व्यथा को दूर करने की जरूरत है। और वो हम हर व्यक्ति मिलकर कम से कम एक पेड़ लगा करके अपनी योगदान को सुनिश्चित कर सकते हैं। और ये सभी शैक्षणिक संस्थानों में ये कार्य किया जा रहा है, कुछ करोड़ वृक्ष लगाए गए हैं और ये आगे लगातार चलते रहना है जब तक कि हम इस क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। इस संबंध में एक जो सबसे बड़ी शक्ति हम सब में है वो है संकल्प की शक्ति। और ये जो संकल्प की शक्ति है ये हमें हर व्यक्ति में लाने की जरूरत है। और मैं हमारा कुछ व्यक्तिगत अनुभव है जिससे मैं कह सकता हूं कि अगर हमने संकल्प कर लिया तो हम जितना कुछ संकल्प करते हैं कहीं उससे ज्यादा हमारी उपलब्धि प्राप्त होती है। मैं जब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ज्वाइन किया आईएएस में, उसके पहले के जब हम परिस्थितियों को देखते हैं और आज से 30-35 साल पहले इस देश की जो परिस्थिति थी, ग्रामीण क्षेत्र की परिस्थिति थी, गांव के स्कूलों की परिस्थिति थी, जिस परिस्थिति में हम पढ़ते थे, जहां बिजली नहीं होती थी, जहां समाचार पत्र नहीं आते थे, उन जगहों पे भी लोग संकल्प लेते थे। और उस बचपन के समय में एक संकल्प लेकर के आगे बढ़ने वाला व्यक्ति जब वो क्लास 7-8 के वर्ग में पढ़ रहा होता है और संकल्प लेता है कि मुझे एक भारतीय प्रशासनिक सेवा में जानी है, तो उसे कुछ पता नहीं होता है कि कैसे जानी है, क्या प्रक्रिया है, क्या व्यवस्थाएं हैं और किस प्रकार वहां तक पहुंचा जा सकता है। परंतु वो पढ़ता जाता है, पहले स्कूल करता है, फिर कॉलेज जाता है, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज जाता है और फिर नौकरी करता है, परंतु इस संकल्प को नहीं भूलता है कि उसका उद्देश्य भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने का है। और अंततः प्रयास करता है नौकरी करते हुए कि हमें इस सेवा में आनी है। मैंने देखा व्यक्तिगत रूप से इसमें कई हर्डल्स आते हैं, कई तरह की व्यवस्थाओं की कमी दिखती है, आर्थिक कमी दिखती है, कई बार लगता है कि आप बहुत सारे कोचिंग इत्यादि की सुविधा का उपयोग नहीं कर सकते हैं, परंतु आपके साथ आपका एक संकल्प हमेशा रहता है। इसमें एक विफलता भी आती है, परंतु उसके बाद जब सफलता आती है, जो मैंने व्यक्तिगत अनुभव किया कि मैं उस गांव से निकलकर पूरे देश के इस प्रशासनिक सेवा में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त करना, ये केवल संकल्प की ही सिद्धि थी। और ये चीज अगर हर व्यक्ति आज शैक्षणिक संस्थानों में करता है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का हो, अपनी उपलब्धि का हो, समाज की उपलब्धि का हो, विश्व की उपलब्धि का हो, ये हासिल कर सकता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा जितनी भी योजनाएं चलती है वो कहीं न कहीं इस संकल्प को प्रेरित करने का प्रयास करती है। हम सभी आपसे, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों से यही अपील करते हैं कि कृपया इस अभियान से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जो देने की क्षमता है हमारा, हमारे अंदर जो देने की क्षमता है वो देने का प्रयास करें और इसमें अपने अंदर की जो स्थिति है उसको मजबूत करने की जो जरूरत है। मैं पिछले 9 साल से जब से इस संस्थान से ज्ञान में आया एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है कि हर दिन जो मुरली के अंदर नई चीजें आती है उसमें कई कुछ न कुछ एक ऐसा चीज मिल जाता है जो पूरे दिन की स्थिति को ठीक कर देता है। और इसलिए हर व्यक्ति जो भी इस ज्ञान में जुड़ा है उन्हें जरूर ये अनुभव होगा कि इस एक घंटे का जो अनुभव है केंद्र पर जाने या अगर नहीं जा सकते तो मुरली सुनने का, उसमें बहुत सारी चीजें सन्निहित है। मैं एक जिले धनबाद का कलेक्टर रहते हुए मैं इस तरह का अनुभव किया था। तो ब्रह्म कुमारीज का एक मेडिटेशन सेंटर मैंने अपने आवास में खोला। मुझे लगा कि हर व्यक्ति अपनी शारीरिक स्थिति सुधारने के लिए जिम लगाता है, आजकल हर घर में जिम लगने लगा है, मानसिक स्थिति सुधारने के लिए और आध्यात्मिक स्थिति सुधारने के लिए कोई व्यवस्थाएं घर में नहीं है। और इसलिए आज जिस प्रकार से हम अपने शारीरिक मानसिक स्थिति की सुधार के लिए कई व्यवस्थाएं कर रखे हैं, आध्यात्मिक स्थिति सुधारने के लिए हर घर में एक मेडिटेशन सेंटर की भी आवश्यकता है। और ये चीज का अनुभव मैं व्यक्तिगत रूप से करके देखा हूं और इसका लाभ मुझे प्राप्त हुआ है। आज भी भारत सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी रहते हुए मुझे लगता है कि दिन भर की स्थिति ज्यादा बेहतर हो जाती है अगर थोड़े देर के लिए हम अपनी आध्यात्मिक अनुभूति कर पाते हैं। मैं आज इस अवसर पे यहाँ उपस्थित होते हुए अत्यंत ही अनुग्रहित हूँ और इसे परमात्मा का निर्देश ही समझता हूँ कि ये सहज संयोग है कि आज इस मंच से उपस्थित होकर मुझे आपसे मिलने का, आपके साथ अपने अनुभव शेयर करने का अवसर मिला। मैं सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद श्री सुनील कुमार बर्नवाल जी। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं श्री राजभूषण चौधरी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। माननीय महोदय, मैं समय की कमी को देखते हुए बिना आपका परिचय कराए ही आपको निमंत्रण देना चाहता हूं। मैं निवेदन करता हूं कि आप अपना वक्तव्य सभा को प्रस्तुत करें। माननीय मंत्री जी।
ओम शांति। आज के इस ग्लोबल समिट जो कि क्लाइमेट चेंजेस पर स्पेशली आधारित के लिए किया गया है, इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं कर्नाटक के माननीय राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं राजयोगिनी बी के प्रभा दीदी, राजयोगी बी के ब्रजमोहन भाई, राजयोगिनी बी के जयंती दीदी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं पूज्य साध्वी भगवती सरस्वती दीदी एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित दुनिया के विभिन्न भाग से आए हुए हमारे ब्रह्म कुमार एवं ब्रह्म कुमारीगण। मैं डॉक्टर राजभूषण चौधरी आप सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज हम सब सनातन के मानने वाले जो क्लाइमेट चेंजेस हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है इस मानव सभ्यता के लिए, उस पर अपने विचार रखने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। और तो सबसे पहली बात यह है कि मनुष्य ईश्वर की अद्वितीय रचना है और उसका जीवन अनमोल ईश्वरीय उपहार है। मनुष्य एवं प्राणियों के का जीवन प्रकृति के 5 तत्वों जल, थल, वायु, अन्न और अग्नि पर निर्भर करता है। परमात्मा ने मनुष्य को इस धरती पर सबसे बुद्धिमान प्राणी तो बनाया ही है, परंतु उसके जीवन का अस्तित्व पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर करता है ऐसा बनाया है। हमारे सनातन परंपरा में प्रकृति वृक्षों, जीवों और एवं विभिन्न तत्वों को कल्याणकारी मानते हुए विविध देव स्वरूप में पूजा अर्चना और आराधना की परंपरा रही है, परंतु मनुष्यों में बुद्धि, तर्क और उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के विकास के कारण प्रकृति के प्रति सम्मान और संरक्षण की प्रवृत्ति समाप्त होती जा रही है। आज हम इसका दुष्परिणाम देख रहे हैं कि किस तरह से धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, शुद्ध ऑक्सीजन और शुद्ध पेयजल की कमी होती जा रही है और जलवायु परिवर्तन से जीवन और समस्त जीव जंतुओं के अस्तित्व के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न होता जा रहा है। इस जलवायु संकट से निपटने के लिए संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है। देश की सीमाओं का विभाजन हम मनुष्यों ने किया है, लेकिन प्रकृति ने नहीं किया है। इसलिए जलवायु परिवर्तन से जो उत्पन्न समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए हम सबों को सामूहिक प्रयास करना होगा। इरेस्पेक्टिव ऑफ बाउंड्रीज, किसी भी देश के आदमी हो, अगर क्लाइमेट चेंजेस होता है तो कहीं ना कहीं सब प्रभावित होते हैं। इसलिए हम सबों को मिलकर के इस क्लाइमेट चेंजेस की समस्या से निपटने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में हमारा मुख्य विषय स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता अत्यंत प्रासंगिक है। आध्यात्मिकता हमें न केवल आंतरिक शुद्धि और शांति प्रदान करती है, बल्कि यह हमें प्रकृति और हमारे पर्यावरण के प्रति भी जागरूक बनाती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रेरित होकर हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को संतुलित और स्वस्थ बना सकते हैं, बल्कि समाज में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अतः हमें आध्यात्मिकता के मूल सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाकर जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों को सामना करने के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। जब हम सब मिलकर आध्यात्मिकता और पर्यावरण संरक्षण के इस मार्ग पर चलेंगे, तभी हम एक स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित समाज का निर्माण कर पाएंगे। जहां तक हमारे ब्रह्म कुमारी संस्था का संदर्भ है, तो विश्व शांति, सद्भावना और मानवीय मूल्यों तथा सनातन सांस्कृतिक मूल्यों के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील हमारा प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है। इस संस्था की स्थापना स्वयं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने अपने मानवीय माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा की है। इस संस्था के सेवा केंद्र 5 महाद्वीपों में फैला हुआ, लगभग 140 कंट्री में हमारा संस्थान है। यह संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ से गैर सरकारी संगठन के रूप में जुड़ी हुई है तथा इसके संगठनों यूनेस्को, यूनिसेफ तथा सामाजिक आर्थिक परिषद से भी जुड़ी हुई है। हम सब मिलकर इस क्लाइमेट चेंजेस की समस्या से निपटने का प्रयास करें, इसके लिए अध्यात्म बहुत बड़ा माध्यम है। हम सब निरंतर सनातन में सोचते रहते हैं, कहीं ना कहीं हम वृक्षों की पूजा करते हैं, हम जीव जंतुओं की पूजा करते हैं। मूल अर्थ यह होता है कि प्रकृति में जो भी चीज है एक संतुलन बना रहे, और इस संदर्भ में हमारी सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि क्लाइमेट चेंजेस का जो दुष्प्रभाव है उससे हम बचें। इस कड़ी में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ता ने बताया, कि एक पेड़ माँ के नाम, अगर हम एक छोटा सा प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा ये कार्यक्रम होगा जिससे हम क्लाइमेट चेंजेस की समस्याओं से बच सकते हैं। वर्तमान समय में ब्रह्मा कुमारी संस्था भारत सरकार के साथ मिलकर अनेक अभियान चला रही है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संस्था की दिवंगत मुख्य प्रशासिका दादी जानकी जी को स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। दादी जी के नेतृत्व में ब्रह्मा कुमारी संस्था ने पूरे भारत में अपने विशाल फैले हुए सेवा केंद्रों के नेटवर्क द्वारा सक्रियतापूर्वक भाग लिया था। इससे लोगों में पर्यावरण स्वच्छता के साथ साथ मानसिक स्वच्छता के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई है। ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के संयुक्त रूप से अनेक अभियान अखिल भारतीय अभियानों का हिस्सा बनकर राष्ट्र सेवा और समाज सेवा का कार्य कर रही है। ओम शांति, जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी का। उन्होंने भारत सरकार के साथ मिलकर ब्रह्मा कुमारी संस्था के कार्यों की सराहना की और साथ में आदरणीय दादी जानकी जी को याद दिलाया कि कैसे वो एक एम्बेसडर बनकर प्रेरणा की मूर्ति बनी रहीं और हमें आज तक भी प्रेरणाएं दे रही हैं। और ये संस्था जल शक्ति मंत्रालय के साथ जल जन अभियान का हिस्सा बनकर वृक्षारोपण के कार्य में कल्प तरु इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करके अनेक वर्षों से पर्यावरण से संबंधी अनेक कार्यक्रमों में भागीदारी निभा रही है और आगे भी निभाती रहेगी। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं ब्रह्मा कुमारी के सेक्रेटरी जनरल राजयोगी ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई जी से कि वो अपने आशीर्वचन आज के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम सभी को दें। आदरणीय भ्राता जी हमारे लिए एक प्रेरणा पुंज हैं जिन्होंने ब्रह्मा कुमारी के इस कार्य को विश्वव्यापी बनाने में अपने जीवन के अनेकों वर्ष अनेकों दशक समर्पित किए। आज 90 वर्ष की आयु में भी युवाओं सा उत्साह रखते हुए अनेकानेक कार्यक्रम करते रहते हैं और हमें प्रेरणाएं देते रहते हैं। आदरणीय ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई। कुछ ही मिनटों में हम मंच पर उपस्थित राष्ट्र चेतना पुरस्कार के विजेता श्री सुधीर कुमार पांडा जी का भी सम्मान करेंगे। माननीय राज्यपाल महोदय उन्हें पुरस्कृत करेंगे। थोड़ी देर का इंतजार। आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई साहब।
ओम शांति। आज की सेशन के मुख्य अतिथि महामहिम थावरचंद गहलोत जी ब्रह्मा कुमारी की एडिशनल चीफ राजयोगिनी जयंती बहन जी मंच पर सुशोभित हमारे माननीय वक्तागण और इस विशाल सभा में उपस्थित आत्माओं, आज के विषय का जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो है सामूहिक प्रयास। तो हम जरा समीक्षा करें कि सारे विश्व में सामूहिक प्रयास की क्या संभावना है और कहां तक हो रहा है। अगर सारे विश्व को देखें तो उसके जो विभिन्न शक्तिशाली देश हैं वो तो एक दूसरे को ही तबाह करने में लगे हुए हैं वो सारे विश्व के पर्यावरण की रक्षा क्या करेंगे। और अगर हम व्यक्तिगत तौर पे देशों को देखें तो हम जानते हैं कि आज हर देश का जो चलाने वाला है उसकी अवधि 5 साल होती है। तो वो व्यक्ति यही सोचता है कि मेरे 5 साल किसी तरह गुजर जाएं, उसमें मैं जो कुछ कर सकता हूं करूं, आगे पीछे का मुझे क्या लेना देना। और अगर हम व्यक्ति को देखते हैं तो व्यक्ति सोचता है मेरी तो थोड़ी सी आयु है और तब तक तो दुनिया चल ही जाएगी, मुझे क्या लेना है। इसलिए सब कुछ जो करते हैं वो सोचते हैं अगर थोड़ा सा मैंने कुछ डिस्टर्बेंस कर भी दिया क्लाइमेट को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा भी सोचते हैं कि मेरी थोड़ी सी गलती से सारी दुनिया पे क्या असर होने वाला है। और फिर कई ये सोचते हैं अगर क्लाइमेट चेंज के कारण से बहुत बड़ा कोई दुर्घटना हो गई तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं। तो हर हालत में हम देखते हैं अगर व्यक्ति वास्तविक स्थिति को देखा जाए तो वास्तविक स्थिति कोई इतनी ज्यादा रौनक वाली नहीं है। अब होगा क्या, भगवान कहते हैं कि जो करता है सो पाता है, ये कर्म का फिलॉसफी है। और आज जो स्थिति हम देख रहे हैं वो सामूहिक तौर पर, यहां पर सामूहिक प्रयास से हम दुनिया को इस खतरनाक स्थान पर ले आए। आगे क्या होगा, क्या दुनिया चलेगी नहीं, क्या अगर इसके कारण से महाविनाश आ गया तो फिर क्या होगा। तो इसलिए ये चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये परमपिता परमात्मा के कंट्रोल में है। परमात्मा कहते हैं इस वक्त भी जो पर्यावरण को बचाव के लिए, स्थायी बचाव के लिए प्रयास करेंगे उनको उनका फल मिलेगा, और जो इसको बिल्कुल तबाह करने के लिए काम कर रहे हैं उनको भी उनका फल मिलेगा। तो शीघ्र ही आप देखेंगे, आप धरती पर दृश्य तो देख ही रहे हैं इस प्रकार से क्या हो रहा है, शीघ्र ही आप क्या देखेंगे कि परमपिता परमात्मा जो पर्यावरण को इस खतरनाक स्थान पर ले आए हैं कि जहां डेजर्ट होता था वहां फ्लड आ रहे हैं, अब सब परिस्थितियां जानते हैं, रोज सुनते हैं कि सारे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, समुद्र की सतह बढ़ रही है आदि आदि। तो बहुत शीघ्र ही आप देखेंगे कि पर्यावरण को खराब करने वाले लोगों को ऑटोमेटिक ही वो अपने आप को ही इस दुनिया से उठाकर अपने शस्त्रों के द्वारा या प्राकृतिक प्रकोप के द्वारा परम धाम में ले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया नहीं चलेगी। ये भारत देश एक कहा जाता है भगवान का अपना देश है। भारत देश के लोग सिर्फ ये नहीं समझते कि मेरी आयु के साथ दुनिया खत्म हो जाएगी, भारत के देश के लोग तो आत्मा को मानते हैं कि कुछ भी हो जाएगा आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। और जितनी यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें की गई उसको केवल भारत के लोग ही अपना सकते हैं क्योंकि आध्यात्मिकता को जानते हैं। वो जानते हैं आत्मा शाश्वत है, ये सृष्टि चक्र भी शाश्वत है, इसका नियंता भी शाश्वत है। इसलिए ये जो पर्यावरण के बचाव की बात है इसमें पहली बात क्या है कि हम ये समझें इस दुनिया में हमें सदा रहना है। ऐसे नहीं कि दुनिया मेरी गवर्नमेंट जाने के बाद मेरा कोई तल्लुक नहीं या मेरा शरीर छूटने के बाद मेरा कोई तल्लुक नहीं। तो ये भारत का ही ज्ञान है जो भगवान ने दिया था, तुम आत्मा अमर हो। फिर भगवान कहते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए क्या करना है। तो साफ साफ भगवत गीता में भगवान ने बताया है कि 5 ऐसी गड़बड़े हैं, 5 ऐसी कमजोरियां हैं जिनके कारण से पर्यावरण बिगड़ता है। अब उनसे समझ भी सकते हैं, जैसे लोभ है। अब लोभ के कारण हम जानते हैं कि मनुष्य ने क्या कुछ कर लिया है, क्रोध है उसके कारण क्या कुछ कर लिया है। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो व्यक्ति शरीर मानने से पैदा होते हैं, और भारतवासियों ने भी जब से शरीर मानना शुरू कर दिया अपने आप को, आत्मा का ज्ञान गुप्त हो गया, तब से इन विकारों के वश जो कुछ भी हम करेंगे वो पर्यावरण को बिगाड़ेगा, हमारी मनस्थिति को बिगाड़ेगा, और उसका परिणाम जरूर किसी न किसी प्रकार के गलत कर्म का होगा। और जब भगवान आके समझाते हैं, जो ब्रह्मा कुमारी सारे विश्व को संदेश दे रहे हैं, भगवान ने कहा तुम आत्मा हो, आत्मा से ये कमजोरियां निकाल दो, आत्मा में सद्गुण धारण कर लो, ये जिसको कहा जाता है सामूहिक प्रयास, तो सामूहिक प्रयास मिलकर के सबका सकारात्मक हो जाएगा और तभी पर्यावरण का बचाव होगा, और वो पर्यावरण ऐसा श्रेष्ठ होगा जो एक जन्म के लिए नहीं, एक सदी के लिए नहीं, बल्कि युगों युगों के लिए चलेगा। यही ब्रह्मा कुमारी का संदेश है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ब्रिजमोहन भाई साहब का, जिन्होंने आध्यात्मिक पहलू और आध्यात्मिक सत्य हमारे सामने उजागर किए। आज हम सभी मानते हैं एट द हार्ट ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस लाइज ह्यूमन ग्रीड। ये हम सुनते और समझते आ रहे हैं, अब उस परिवेश को बदलने की आवश्यकता है। आइए आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम में हमारे बीच कुछ ऐसे विशिष्ट जन हैं जिन्होंने इस विश्व को एक बेहतर विश्व बनाने के लिए अनेक कार्य किए हैं। हमारे साथ श्री सुधीर कुमार पंडा जी हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, प्रतिदिन टीवी एंड न्यूज़पेपर ओडिशा से हमारे बीच पधारे हैं। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से और आदरणीय मृत्युंजय भाई जी से अनुरोध करता हूं कि इन्हें राष्ट्र चेतना पुरस्कार से सम्मानित करें। माननीय श्री सुधीर कुमार पांडा जी, मीडिया के क्षेत्र के उनके अप्रतिम योगदान के लिए उन्हें राष्ट्र चेतना पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। माननीय राज्यपाल महोदय माल्यार्पण कर रहे हैं, जोरदार तालियों से हम उनका अभिवादन करते हैं। राष्ट्र चेतना पुरस्कार प्रेजेंटेड टू श्री सुधीर कुमार पंडा, मैनेजिंग डायरेक्टर प्रतिदिन टीवी एंड न्यूज़पेपर ओडिशा, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ ग्लोबल समिट 2024 ऑन स्पिरिचुअलिटी फॉर क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी एट आर शांतिवन कैंपस आबू रोड राजस्थान भारत, फ्रॉम 4th टू द 7th अक्टूबर 2024, वी फील प्राउड एंड ऑनर्ड टू प्रेजेंट यू विद राष्ट्र चेतना पुरस्कार for sincere and dedicated service in promoting the true spirit of media. मैं साथ ही साथ आदरणीय मृत्युंजय भाई जी से अनुरोध करता हूं कि मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री जी का भी पारितोषक देकर एवं माल्यार्पण करके स्वागत और सम्मान करें। श्री राजभूषण चौधरी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनका भी स्वागत और सम्मान किया जा रहा है और उन्हें याद सौगात दी जा रही है और साथ में ईश्वरीय प्रसाद भेंट दिया जा रहा है। साथ में सम्मान किया जा रहा है आज के हमारे मुख्य अतिथि कर्नाटक के माननीय राज्यपाल श्री थावर चंद गहलोत जी का। जोरदार तालियों से माननीय राज्यपाल महोदय का हम सम्मान करते हैं और उन्हें ये स्मृति चिन्ह भेंट कर रही हैं आदरणीय राजयोगिनी जयंती दीदी जी। सम्मान किया जा रहा है, आदरणीय जयंती दीदी जी सम्मान कर रहे हैं श्री सुनील कुमार बर्नवाल जी का, एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्मृति चिन्ह एवं पारितोषक। ईश्वरीय प्रसाद साथ में भेंट दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदय का कि उन्होंने यह पुरस्कार वितरण किया और हम सब का सम्मान स्वीकार किया। अब इंतजार की वो घड़ियां समाप्त होती हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कर्नाटक के माननीय राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत जी को कि वो अपना अतिथि भाषण और प्रेरणाएं हम सब के समक्ष प्रस्तुत करें। माननीय राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत जी, जोरदार करतल ध्वनि से हम माननीय का स्वागत चाहते हैं।
ओम शांति। ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित ग्लोबल समिट में उपस्थित भारत सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री आदरणीय श्री राजभूषण चौधरी जी, ब्रह्म कुमारी संस्थान की एडिशनल चीफ आदरणीय बीके जयंती बेन, ब्रह्म कुमारी के जनरल सेक्रेटरी राजयोगी बीके ब्रिजमोहन भाई, ज्ञान सरोवर की निदेशक आदरणीय राजयोगिनी बीके प्रभा दीदी जी, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी श्री सुनील कुमार जी वर्णवाल जी, प्रतिदिन टीवी एंड समाचार पत्र उड़ीसा के प्रबंध निदेशक श्री सुधीर कुमार पांडा जी, देशभर से आए हुए सभी अतिथि महानुभाव, मीडिया के महानुभाव एवं सभा में उपस्थित सभी ब्रह्म कुमार, ब्रह्म कुमारी और अन्य महानुभाव, मैं आप सबका शीश झुका करके सादर अभिवादन करता हूं। आप सभी को जानकारी है कि हम सभी ब्रह्म कुमारी संस्था के इतिहास तथा आदर्शों से परिचित हैं। ये प्रमुख रूप से महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था है, जो व्यक्तित्व निर्माण और विश्व नव निर्माण के लिए समर्पित है, प्रतिबद्ध है और उसके लिए निरंतर सक्रिय प्रयास कर रही है। स्वच्छ और स्वस्थ समाज की परिकल्पना एक ऐसे समाज की परिकल्पना है जहां भौतिक रूप से साफ सुथरे वातावरण की उपलब्धता के साथ मानसिक और आध्यात्मिक रूप से शुद्धता और संतुलन बनाए रखने का है। शास्त्रों में कहा गया है कि स्वच्छ मन स्वच्छ तन से ही जीवन में सच्ची सुख और शांति प्राप्त होती है। आजकल के व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन शैली में लोग मानसिक तनाव, अवसाद और चिंता जैसी समस्याओं से ग्रस्त हो रहे हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान आध्यात्मिकता में निहित है। आज समाज में अनेक विषमताएं हैं, इन्हें रोकने की महती आवश्यकता है। सामाजिक विषमता समाज व देश के विकास में बाधक होती है। हमें विषमताओं को दूर कर पर्यावरण सुधार की दृष्टि से सामाजिक समता और समरसता का वातावरण बनाने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि समाज का हर व्यक्ति स्वस्थ और स्वच्छता के प्रति जागरूक होकर वो समाज में एक नई चेतना का संचार कर सकता है। हमारी धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं में प्रकृति, वृक्षों, जीवों और विभिन्न तत्वों को कल्याणकारी मानते हुए विविध देव स्वरूप में पूजा अर्चना और आराधना की परंपरा रही है। हम सब जानते हैं कि हजारों वर्ष पूर्व से भारत में पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए, सुदृढ़ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे, जल, वायु आदि की पूजा अर्चना का प्रावधान है जो आज धीरे धीरे थोड़ा बहुत कम होता जा रहा है। वृक्षों की कटौती, जल का संरक्षण और संवर्धन में अभाव, ये सब पर्यावरण को असंतुलित करने का काम कर रही है। जलवायु परिवर्तन से मानव जीवन और समस्त जीव जंतुओं के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। प्राचीन काल से ही हमारे सोच सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे संतु निरामय और वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर रही है। इस सोच के साथ हम प्राचीन काल से ही जल वन वायु के संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य करते आ रहे हैं, परंतु आज इसमें भारी कमी दिखाई देती है। इसके कारण पर्यावरण असंतुलन बिगड़ता जा रहा है। इसी सोच को साकार करते हुए जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक मंच पर भी प्रयास किए गए हैं। आज जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें सरकारें, निजी क्षेत्र, वैज्ञानिक समुदाय और आम नागरिक सभी मिलकर काम करें, इस प्रकार की आवश्यकता है। संकल्प लेकर के सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। आज इस समारोह में आप सब उपस्थित हैं, आप संकल्प लें कि पर्यावरण सुधार के लिए हम सिद्धि तक प्रयास करने का काम करेंगे। वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर संयुक्त प्रयासों के बिना इस संकट से निपटना मुश्किल है। संयुक्त प्रयासों से ही हमें एक सुनिश्चित और स्थायी भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा 20 सेवा प्रभाग के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलनों, कार्यशालाओं का आयोजन कर तथा जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को अध्यात्म के रूप से सशक्त करने का कार्य किया जा रहा है। मैं निश्चित रूप से ब्रह्म कुमारी संस्था की इसके लिए प्रशंसा करता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि ब्रह्म कुमारी द्वारा जो योजनाएं संचालित की जा रही है, जिन प्रभागों के माध्यम से काम किया जा रहा है, उन प्रभागों के कार्य योजनाओं को सफल बनाने में आप अपना योगदान प्रदान करें। मेरा विश्वास है कि चरित्र भी पर्यावरण सुधार के लिए आवश्यक है। मेरा मानना है कि चरित्रवान, परिश्रमी तथा आध्यात्मिक रूप से सशक्त लोगों के बल पर ही भारत को विश्व गुरु के सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित करने की संकल्पना को साकार किया जा सकता है। हमारे प्राचीन परंपराओं के अनुसार, जैसा मैंने पूर्व में बताया, आज भी वो बातें प्रासंगिक है पर्यावरण सुधार की दृष्टि से। 4 दिवसीय आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन में स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संयुक्त प्रयास विषय पर चर्चा में देश के संवैधानिक पदों का दायित्व संभालने वाले एवं अन्य महानुभावों को शामिल कर इस विषय की गंभीरता से सभी को अवगत कराने का ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा महान काम किया जा रहा है। मैं यहाँ इस प्रकार के सम्मेलनों में आज तीसरी बार उपस्थित हुआ हूँ और मुझे यहाँ आकर के बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलता है और अपने चरित्र में, अपने मन मस्तिष्क में अंगीकार करके उस पर चलने की प्रेरणा मिलती है। मैं सोचता हूँ आज भी आप लोग भी इसी प्रकार की सोच रखते हैं। यहाँ आने पर शिक्षा भी मिलती है, शिक्षा का संरक्षण करने का मार्ग भी प्रशस्त होता है और हमें सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी मिलती है और सद्मार्ग पर चलकर ही हम सामाजिक पर्यावरण को भी ठीक कर सकते हैं, वैश्विक पर्यावरण को भी ठीक कर सकते हैं। और जो देश और दुनिया में आज उग्रता के कारण, आक्रामकता के कारण एक दूसरे को निपटाने का अभियान चलाया जा रहा है, उसको भी ठीक करने की और विश्व कल्याण और विश्व शांति की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा ऐसे कार्यक्रमों से मिलती है। मेरा मानना है कि आध्यात्मिक व्यक्ति न केवल अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने की जिम्मेदारी लेता है बल्कि दूसरों को भी इस दिशा में प्रेरित करता है। मैं विश्वास करता हूं कि आप यहां से प्रेरणा लेके जाएंगे, अपने इष्ट मित्रों को भी, पास पड़ोस वालों को भी, अपनी आने वाली भावी पीढ़ी को भी इस प्रकार के वातावरण से प्रेरित करने का काम करेंगे ताकि ये पर्यावरण सुधार का लक्ष्य पूर्णता की ओर आगे बढ़ सके। ब्रह्म कुमारी संतान इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। मैं ये महसूस करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहा है, उसे अध्यात्म से जुड़ना चाहिए। जब अध्यात्म से जुड़ते हैं तो सारी समस्याएं हमारे ध्यान में आती है, हम भी सुधरते हैं और दूसरों को भी सुधारने का प्रयास करने की ओर प्रेरित होते हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अध्यात्म से जुड़े और सद्मार्ग पर चले और दूसरों को भी सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें और विश्व शांति व विश्व कल्याण की दिशा में कार्य करें और आगे बढ़ें। कलात्मक प्रस्तुति के लिए मैं डॉक्टर लता सिंह जी की शिष्याओं को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं आयोजित कार्यक्रम की सफलता के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी का, जिन्होंने हमें शुभ प्रेरणाओं से भरकर हमें क्या करने की आवश्यकता है इस पर हम सभी का ध्यान खिंचवाया। मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं कि आज समय की सीमाओं को देखते हुए थोड़ा विलंब हुआ है, मगर फिर भी माननीय राज्यपाल महोदय हमारे बीच विराजमान रहे और उन्होंने ये शुभ प्रेरणाएं हमें दी, इसलिए जोरदार करतल ध्वनि से हम माननीय राज्यपाल महोदय का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। कार्यक्रम की अंतिम घड़ियों की ओर हम पहुंचे हैं। मैं मंच पर उपस्थित हमारे सभी अतिथियों का धन्यवाद करूंगा, साथ ही साथ सभा में उपस्थित आप सभी का भी धन्यवाद करूंगा। कुछ ही देर में हम अगले सत्र की ओर प्रस्थान करेंगे, माननीय राज्यपाल महोदय हमसे विदा लेंगे। मैं सभी का पुनः धन्यवाद करते हुए अनुग्रह करता हूं आप सभी से कि आप अपने स्थान पर खड़े रहें, राष्ट्रगान के साथ इस कार्यक्रम का समापन करते हैं, इस सत्र का समापन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय का। माननीय महोदय मंच से प्रस्थान करेंगे और जैसे उन्होंने कहा कि वो तीसरी बार यहाँ शिरकत कर रहे हैं, उन्हें पुनः आने का निमंत्रण जाते जाते देना चाहते हैं कि आप पुनः पधारें, आप पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधर साधुवाद।